Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य. एके भी कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन.
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेज न्यू जीएसटी रेजिम टू इम्प्रूव कंजम्पशन एड्स गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन मेजर्स टू सपोर्ट एक्सपोर्टर्स इम्पैक्टेड बाय यूएस टैरिफ्स. Benchmark equity indices end on a flat note amid volatility. Sensex falls 7 points to close at 80,711. Nifty settles above 24,740. And crude oil prices extend decline for a third straight session.
आर्थिक सुर्खियों में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार जीएसटी की नई व्यवस्था से उपभोग में सुधार होगा. उन्होंने कहा कि सरकार अमरीकी शुल्कों का निर्यातकों पर पड़ने वाले असर से निपटने के उपाय कर रही है. घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भरे कारोबार के अंत में लगभग पूर्व स्तर पर बने रहे. सेंसेक्स 7 अंक की गिरावट से 80,711 पर और निफ्टी 24,740 के ऊपर दर्ज. और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट.
इन आवर टॉप स्टोरी, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that the new GST regime will improve consumption by citizens and it will not impact capital expenditure. In an interview to a private news channel, Sitharaman said 99% of all the goods and services are now either in the 0, 5 or 18% bracket. She said it was the first time that both the issue of consumption cess and a comprehensive proposal on GST have been taken up by the centre. The minister said petroleum and alcohol products will be outside of GST. The minister informed the government is working on measures to support exporters who are impacted by the 50% US tariffs. She said a package for exporters is being prepared. Finance Minister Sitharaman said the objective of Atmanirbhar Bharat was not only about producing everything in the country, but also about self-respect in the face of uncertain global trade policies. AKB, as we fondly call you, on Market Mantra, these reforms that have been announced by the Union Finance Minister is twofold. One is to improve the purchasing power of the average citizen of the country, and secondly, to help exporters who are impacted by the US tariff policy. How do you see these reforms helping both parties?
Well, the objectives, to be honest with you, manifold. At one level, it is to rationalize the GST structure. Goods and services tax came into this country in 2017. 8 years have gone by. What has happened is that we have been persisting with almost 5 rates. Now we have reduced it to mainly 4 rates, which is if you include the zero. So that is a big rationalization. And what is more important is that you have got now a rate of 5% for many of the items, and then you have got the remaining items in at 18% bracket, and the just a few sin luxury goods, which may be aerated water or maybe things like the high-end vehicles, yachts, they are at 40%. There is an assurance that the compensation cess, which was extended during the COVID time till 2026, will come to an end before the end of this calendar year. There are a large number of, now almost 95% of those items which were in the 12% category are now down to 5%. So it will have a salutary impact.
And 28% into the 18%. 18%.
So it will have a salutary impact on the overall, the price or the retail price of a large number of commodities. And I think that will give you a demand revival. That will give a kind of a consumption boost and contribute to economic growth. And as you rightly pointed out, it will help probably to neutralize the whatever negative impact the U.S. tariffs have on the overall growth of the economy. There were fears that if the Trump tariffs get enforced, then Trump tariff would mean that India's GDP growth may take a knock of maybe 0.3% of GDP or 0.5% of GDP. Now, I am of the view that with this GST rationalization of rates, the loss that one had feared will probably will neutralize. That's number one. And number two, what I do see happening is that the inverted duties tax structure in GST, which was a big problem, because as you know that what happens is that if you are charging a rate of tax at the on the raw materials and the component which is higher than the rate that you charge on the end product, then that is called an inverted duties tax structure. And in this rationalization, large number of items have been addressed, particularly in the employment-intensive sectors like man-made fibers. The entire textile industry will have the benefit of that, including even the fertilizer has got the benefit of this removal of the inverted tax structure. And whatever inversion is still there, there the government has said, the GST Council has said, that 90% of the input tax refunds will be automatically credited, and it will only the remaining 10% which will be addressed. There is a promise of an appellate body which will become very functional and ensure that complaints over assessment and everything will be addressed quickly and smoothly and expeditiously. And remember, the removal of compensation cess on vehicles, for that matter, will actually bring down the price of many high-end vehicles. So it will give demand. And finally, what I would say is this, that services like the insurance sector, the health insurance, and on the life insurance, whether it is a ULIP or whether it is an endowment policy, and whether it is an individual health insurance, there it is to be 18% GST. Now that has become zero. There may be some problems with the insurance companies over this, but as we understand that these can be sorted out, and the government is also assured that if there are any profiteering that takes place on this on the basis of these lower taxes, steps can be taken in appropriately.
एकेपी बहुत सारी चीजों को आपने हमारे श्रोताओं के लिए बहुत आसान भाषा में समझाया. कुछ और मैं आपने जो बातें कही, जैसे एमएसएमई क्षेत्र के लिए जो बहुत सारी ऐसे होता था रॉ मेटेरियल जो 28% पे होता था, लेकिन उनके जो एंड प्रोडक्ट होते थे उस पर 18% टैक्स होता था. अब अगर हम जीएसटी की शुरुआत से 8 साल का जो दौर है उसको हम पूरे एक समग्र परिप्रेक्ष्य में देखें, तो क्या हमारे पास ये मानने के पर्याप्त कारण है कि सरकार ने 8 साल में जीएसटी की जिस अवधारणा को, जिस सोच के साथ शुरुआत हुई थी कि हमें एक सिंप्लीफाइड, एक बहुत सरल टैक्स रिजीम बनाना है जिसमें टैक्स देने वाले को भी आसानी रहे, आम उपभोक्ताओं के लिए भी आसानी रहे, आम व्यापारियों के लिए आसानी रहे और सरकार के लिए भी आसानी रहे, जो आपस का विश्वास वाला माहौल था, क्या सरकार उसकी तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में कामयाब हो पाई है?
मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ. एक बहुत बड़ा कदम है, पर ये एक ये अंतिम चरण नहीं है. ये अंतिम चरण अभी आने वाला है, क्योंकि जो गुड एंड सिंपल जीएसटी जो टैक्स जो होना चाहिए उसमें अल्टीमेटली सिर्फ दो रेट होने चाहिए. एक हुआ डीमेरिट गुड्स का रेट और एक हुआ ऑर्डिनरी रेट. अभी तक हमारे पास हैं एक्चुअली 3 रेट
जी,
5, 18 और 40. तो कॉम्पेंसेशन सेस तो निकल जाएगा
जी,
बढ़िया बात. 40% रहना चाहिए क्योंकि वो डिमेरिट गुड्स में है, लग्जरी गुड्स में है, सिन गुड्स में है. पर जो जो नॉन सिन गुड्स जो है उसमें अभी भी 5 और 18 है. तो मुझे लगता है कि अगले, अगर हम समझते हैं 8 साल में हम यहां तक पहुंच गए हैं, मे बी हम अगले 5 साल में ये 5 और 18 को आस्ते आस्ते पास में लाकर मे बी 12% या 10% में अगर अटक जाए तो एक होगा एसेंशियल गुड्स के लिए और दूसरा होगा लग्जरी गुड्स के लिए. सो मान लीजिए 10 और 40, सो ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं एंड सर्विसेज अगर 10 या 12% में आ जाएं, मैं समझता हूं वही होगा एक गुड एंड सिंपल टैक्स का प्रकृत उदाहरण।
कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे जीएसटी के जो बदलाव आए हैं उसके बारे में। एके भी आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। अब हमारे श्रोताओं के लिए 2-3 एक शंकाएं हैं या एक उसमें क्लैरिटी चाहिए। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर जीवन बीमा में या लाइफ इंश्योरेंस है या उससे टर्म प्लान है, यूलिप प्लान है, सब में जीएसटी खत्म कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी खत्म कर दिया गया, क्या ये बात सही है?
एकदम सही है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपकी इंडिविजुअल है,
अगर ग्रुप है तो नहीं है।
ग्रुप में है और नहीं है, नहीं। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस किया है, उसमें जो है आपकी जो प्रीमियम की शेयर है उसमें टैक्स लगेगा। पर अगर इंडिविजुअल आपका हेल्थ इंश्योरेंस या यूलिप यूनिट लिंक जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती
है, टर्म प्लान है, लाइफ इंश्योरेंस है, कुछ भी है,
सब में कोई टैक्स नहीं है, तो आम इंश्योर्ड जो व्यक्ति जो है उसके लिए कोई टैक्स देना जरूरी नहीं।
लेकिन जनरल इंश्योरेंस,
जनरल इंश्योरेंस,
मोटर इंश्योरेंस है, घर का इंश्योरेंस है,
जनरल इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, सब में टैक्स है। उसमें क्या होगा कि इसीलिए जो गाड़ी की जो दाम हम कह रहे हैं, तो गाड़ी की दाम और भी घट जाती अगर अगर कार इंश्योरेंस में भी वो आपका
गाड़ी, अभी आपने गाड़ी का जिक्र किया तो गाड़ी में आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि सेस जो लगाया जाता था उसकी वजह से मूल कीमत से कहीं ज्यादा कीमत हो जाती थी गाड़ी की एंड यूजर्स के लिए, क्या उसमें भी राहत मिली है?
उसमें भी राहत मिली है क्योंकि कॉम्पेंसेशन सेस चला गया है। हालांकि टैक्स 28 से बढ़कर 40 में आ गया,
लेकिन सेस की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती थी,
बड़ी वैल्यू होती थी। इसीलिए इसी वक्त जो हाई एंड लग्जरी गाड़ी का है उनका मानना है कि 3% से 8% का एक रिडक्शन हुआ है,
कटौती वहां पे भी है,
हुई है। और ये कटौती जो रजिस्ट्रेशन का जो है, रजिस्ट्रेशन को नहीं इंक्लूड कर रही है। अगर मान लीजिए जो ये है कि ये शोरूम डिलीवरी की कॉस्ट बोल रहे हैं, जो ऑन रोड जो होगा उसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो होगा वो भी घट जाएगा क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एक लोअर प्राइस के ऊपर आएगा।
जी।
In more news, CBIC chairperson Sanjay Kumar Agarwal has termed the next generation GST reforms as bold and comprehensive. Saying that MSMEs will benefit the most from these reforms, he added that simplification with two rates will provide MSMEs tax certainty and will also protect them from disputes on account of classification or evaluation.
I would say that MSMEs would be the biggest beneficiary of this reform process, because if tax system is complex, then the big corporations, they can hire consultants, yes, for the compliance. But MSMEs, they cannot afford consultants. And many times they land up in tax disputes that take away their working capital. And ultimately, it is disastrous for MSMEs in case they enter into any kind of disputes. So this simplification, which has come with this transformational reform with two rates only, will definitely help MSMEs, will provide them tax certainty, and they will not be facing any kind of disputes on account of classification or valuation. So that really will help MSMEs in conducting or focusing on their business.
And to learn more, tune in to 100.1 Akashwani FM Goal at 7:10 p.m. today to listen to this program in Hindi, and at 9:30 p.m. today to listen to this program in English.
एक भी बहुत संक्षेप में, एमएसएमई के लिए जो टैक्स की बात हुई है, जो जीएसटी से अभी जो फायदे हैं, क्या ये जो कहा जा रहा है कि उनको, जो छोटे व्यापारी हैं एमएसएमई क्षेत्र के, उनको इनपुट गेट जो क्रेडिट जो मिलता था उनके अकाउंट में, वो अब ऑटोमेटिकली
उनके लिए 90% जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो बिना मैचिंग करके उनको उनके अकाउंट में चली जाएगी। 10% जो है उसके ऊपर असेसमेंट मैचिंग होगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम में समस्या आती है किस तरह से आप मैचिंग करेंगे
जी।
क्योंकि आपने एक चीज खरीदी और एक चीज आपने बेची, वो मैचिंग के लिए, और पहले क्या होता था कि 100% जो आपकी जो है वो मैचिंग होती थी, अब 90% की जो आपकी जो क्लेम है वो डिसबर्स हो जाएगी, और 10% की
रिफंड के लिए भी ऐसा ही होगा, जो उनका रिफंड आता है
रिफंड के लिए भी ऐसा होगा
जी। चलिए जीएसटी पे कुछ और खबरों पर नफर डाल लेते हैं और कुछ प्रतिक्रियाएं लेते हैं। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में की गई कटौतियों से विभिन्न वर्गों को राहत मिली है। गृहिणी, विद्यार्थी और किसान सभी इसका स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे रोजमर्रा का आर्थिक बोझ कम होगा और समेकित विकास को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र के किसान नवनाथ देसाई ने कहा कि ट्रैक्टरों, उर्वरकों, खेतीबाड़ी और सिंचाई के उपकरणों पर करों में कटौती से किसानों का खर्च कम होगा और उनकी आय तथा बचत बढ़ेगी।
मेरा नाम नवनाथ देसाई। केंद्र सरकार ने अभी ट्रैक्टर, खाद, खेती के औजार और सिंचाई के सामान पर टैक्स कम कर दिया है। मैं किसान होने के नाते इसमें मेरा और मेरे किसान भाइयों का खर्चा काफी कम होगा और हमारी आमदनी और बचत बढ़ेगी, इसलिए मैं बड़े दिल से सरकार का धन्यवाद देता हूँ।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों ने भी जीएसटी दरों में कटौती का स्वागत किया है। दिल्ली स्थित लक्ष्मी नारायण ने कटौती का स्वागत करते हुए आकाशवाणी समाचार को बताया कि शिक्षा क्षेत्र में जीएसटी दरों में कमी से विद्यार्थियों को बेहद लाभ होगा।
अभी जो जीएसटी के जो रेट कम किए हैं सरकार ने, हिसाब से मैं ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। इसमें कम से कम बच्चों की जो पढ़ाई पे इतना खर्चा होता है कि हिसाब से अब देखा जाए तो साथ में जैसे स्टेशनरी है तो उनको वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा और उस हिसाब से कदम बहुत ही सराहनीय है।
क्विक टेक एकेबी ऑन इन्फ्लेशन फिगर्स सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, डू यू एक्सपेक्ट चेंजेस there because of the GST reforms?
I mean, it's a very good question that you have asked. I think what will happen is that inflation management challenges will become far more easy in months to come, provided there is no other unforeseen developments. Inflation right now is already on a decelerating trend. So therefore, is added implication for this would be the Reserve Bank of India, which goes into the monetary policy framing. They will find that handling the inflation challenges will be far more easy than they have found it so far.
And cut interest rates?
Well, you need not cut interest rates because inflation is already under control and growth is picking up. So on the contrary, the rate cut cycle may get prolonged, and the demand or the clamor for further rate cut will probably slow down a bit, because inflation is down, growth is up. Why do you need to cut rates again?
चलिए नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजारों में आज उतार चढ़ाव भरे सत्र के अंत में सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बंद हुए। सत्र की शुरुआत में बाजार में मजबूती रही, बाद में बिकवाली के दबाव में बाजार में गिरावट हुई। कारोबार के अंत में बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 7 अंक की मामूली गिरावट से 80,711 के स्तर पर दर्ज हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 7 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,741 पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.1% की मामूली गिरावट रही, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% की बढ़त दर्ज हुई।
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड द वीक्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑन अ फ्लैट नोट इन वोलेटाइल ट्रेड टुडे। द मार्केट्स स्टार्टेड द डे विद गेन्स बट स्लिप्ड लेटर। बोथ द स्टॉक मार्केट इंडिसेस देन विटनेस्ड अ ड्रामेटिक रिवर्सल, रिकवरिंग फ्रॉम द डेज लोएस्ट पॉइंट। सेंसेक्स डिप्ड मार्जिनली बाय 7 पॉइंट्स टू क्लोज एट 80,711। Conversely, Nifty added 7 points to settle at 24,741. The broader market indices at the BSE also displayed mixed trend. The mid-cap index slipped 0.1%, while the small-cap index rose almost 0.1%.
सेंसेक्स पैक वाले शेयरों में 30 में से 16 कंपनियों में आज गिरावट रही। नुकसान वाले प्रमुख शेयरों में आईटीसी 2%, एचसीएल टेक और टीसीएस 1.5% तथा टेक महिंद्रा 1.4% की गिरावट से बंद हुए। बढ़त वाले प्रमुख शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.3%, मारुति 1.7% और पावर ग्रिड 1.2% की तेजी के साथ बंद हुए।
In sectoral indices at the BSE, 11 out of the 21 sectors logged gains. Top gainers, auto surged by 1.3%, telecom rose over 0.9%, and metal added over 0.7%. Among the top laggards, focused IT dipped over 1.4%, IT as well as FMCG both lost more than 1.2% each, and realty slipped over 1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,134 companies advanced and shares of 1,957 companies declined, while shares of 169 companies remained unchanged.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 11 पैसे के नुकसान से 88.26 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। डॉलर इंडेक्स 98.01 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। एकेबी, अगर शेयर बाजार की दशा पे देखें तो बाजार में अभी हर बार कुछ न कुछ, सुबह जब शुरुआत होती है कारोबार की, बाजार का रुख दूसरा होता है, दिन में कुछ दूसरा होता है, और कारोबार के अंत में कुछ न कुछ बिल्कुल ही उल्टा रुख होता है। क्या माना जाए, निवेशकों में उत्साह है, बाजार के जो खिलाड़ी हैं वो अभी उस चीज को पूरी तरह से जज्ब नहीं कर पा रहे हैं, या अभी जो प्रेशर है तो दोनों के बीच कश्मकश जारी है, इसलिए बाजार खुलता मजबूती के साथ है, अंत होता है लगभग सपाट, या बाजार खुलता गिरावट पे है, अंत होता है, बीच में तेजी आ जाती है, अंत फिर सपाट हो जाता है।
देखिए बाजार के जो खिलाड़ी हैं, जो निवेशक जो हैं, वो अभी भी जो एक वैश्विक वातावरण जो है और डोमेस्टिक जो सिचुएशन जो है उसका तालमेल से अभी भी वो जूझ रहे हैं। और इसीलिए जैसे आपने कहा कि जो स्टॉक मार्केट जब खुलता है स्ट्रांग होता है, पर दिन के टाइम में थोड़ा नीचे आ जाता है, तो वॉलेटिलिटी अभी भी जारी है। पर अगर आज की जो स्टॉक मार्केट जो वो है, वो मैं समझता हूँ वो जीएसटी का खेल है। अगर आप देखेंगे कि सारी जो ऑटो स्टॉक्स हैं वो बहुत बढ़िया किए उन्होंने, पर अगर आप आईटीसी या टोबैको या एरेटेड वाटर जो वरुण बेवरेज जैसे कंपनी देखेंगे, उसमें 2% का गिराव आया है। तो मैं समझता हूं कि हालांकि ब्रॉड नंबर्स स्टेबल रहे हैं, पर अगर आप अंदर ही चीज देखेंगे तो जीएसटी
जहां पे कटौती हुई है उसके बढ़े हैं,
बढ़े हैं जहां पे बढ़े, जैसे ऑटो सेक्टर हुआ, ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा है। जो आईटी सेक्टर है उसमें उनके अलग इश्यूज हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट इश्यूज सब कुछ है, पर इट इज अ जीएसटी प्ले दैट इज सीन इन द मार्केट टुडे।
कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब चर्चा करते हैं एशिया बाजार पर। एशिया बाजारों में आज मजबूती का दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.4%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.2%, जापान का निकेई 1% की बढ़त से बंद हुआ। अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा जापान के ऑटो क्षेत्र में 27.5% का शुल्क घटाकर 15% किए जाने से टोक्यो शेयर बाजार में मजबूती रही। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.2% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में तेजी का दौर रहा। फ्रांस, लंदन और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.3% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
मूविंग ऑन टू द यूएस स्टॉक मार्केट्स, यूएस स्टॉक्स एंडेड हायर ऑन थर्सडे विद द एसएनपी 500 रजिस्टरिंग अ रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई। द लेबर मार्केट डेटा वाज ऑफसेट बाय एक्सपेक्टेशंस फॉर एन इंटरेस्ट रेट कट बाय द फेड रिजर्व। The tech-heavy Nasdaq Composite Index surged almost 1% to settle at 21,708. S&P 500 advanced over 0.8% to 6,502. And the Dow Jones Industrial Average rose around 0.8% to end at 45,621. On the economic front, weekly jobless claims rose by 8,000 to 237,100 for the week ending on 30th of August, according to the Labour Department data. Now, what's your take on what's happening on the labour front? 54,000 new jobs have been added. That's below expectation. What is the state of the US economy based on these figures, including jobless claims? And you cannot disassociate it from the tariff policy.
Well, you know, this is a weekly jobless number, so we should not read too much into it. If you look at the longer trend of the jobless numbers, there's nothing that has happened which will destabilize the markets, and which is what you're seeing in the market overall performance, that it is not. On the contrary, the markets are a little buoyant for the indication that at last Mr. Powell may listen to Mr. Trump and he may actually reduce the interest rates. So therefore, yes, the joblessness for this week numbers are a little disappointing, but on the whole, the U.S. economy is not yet under any shadow of any economic downturn or anything. I am not really perturbed over what is really happening in the U.S. The U.S. tariffs have had an impact.
There've been job inflation. Losses in education, health services, trade, transportation, and utilities.
It is quite widespread. But again, once again, this data is only for 1 week.
Let's have a look at the crude oil market now. Crude oil prices extended its deadline into a third session today as expectations of a higher supply and an increase in U.S. crude inventories added to demand concerns. Brent crude was trading over 0.5% down at $66.64 per barrel, and WTI crude was also trading around 0.7% down at $63.04 per barrel when reports last came in. Meanwhile, U.S. crude oil inventories increased by 2.4 million barrels to around 421 million barrels in the week ending on the 29th of August, according to the Energy Information Administration data. Which way do you see oil prices heading? Inventories are going up. It's only showing that demand is actually coming down.
Well, the trend seems to be that the volatility in crude oil prices is not going to come back what you do see is this, that the prices will remain where they are. Probably in the onset of winter, you might see some uptick. But from an Indian point of view, our import of the Russian oil has come down a bit. Our import of the U.S. has actually, in the month of August, both from the U.S. as well as UAE, have seen a dramatic surge. So what we are doing is this, that over the last 3 months, we have gradually brought down our Russian oil import and increased our import of oil from UAE and the U.S. So it's a geostrategic play at work. And I don't see the overall global crude oil price trends is going to be any impact or any downside impact on the Indian economy or the public finances.
Let's have a look at the bullion market now. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.3% up at 1,07,030 rupees per 10 grams, and silver was trading over 0.3% up at 1,24,060 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 0.3% की बढ़त से 106,710 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी मामूली बढ़त से 122,878 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। एकेबी सोने और चांदी वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए सोने और चांदी में अब कितने चमक बाकी है?
थोड़ी बहुत चमक डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी बहुत बाकी है, क्योंकि जो वेडिंग सीजन जो आ रहा है उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ी बहुत
सोने के मुकाबले चांदी ने तेज दौड़ लगाई,
चांदी ने ज्यादा। एग्जैक्टली, सो वंस द पितृपक्ष इज ओवर, आई एक्सपेक्ट द प्राइसेस वंस अगेन do a better performance.
एक भी कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। और अब
नमस्कार।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेज न्यू जीएसटी रेजिम टू इम्प्रूव कंजम्पशन एज गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन मेजर्स टू सपोर्ट एक्सपोर्टर्स इम्पैक्टेड बाई यूएस टैरिफ्स। Benchmark equity indices end on a flat note amid volatility. Sensex falls 7 points to close at 80,711. Nifty settles above 24,740. And crude oil prices extend decline for the third straight session. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.